25 जनवरी शनिवार बीबीसी इंडिया बोल में आदर्श राठौर का अभिवादन करें स्वीकार। आज है बीबीसी इंडिया बोल का आखिरी अंक, इसमें शामिल होंगे आप श्रोता, बीबीसी हिंदी रेडियो से जुड़ी आपकी यादें और अनुभव।
पैसे भी नहीं थे, मतलब मम्मी जो पैसे देती थी उसी को इकट्ठा करके मैंने रेडियो खरीदा और उसके बाद से कभी रेडियो से सफर टूटा ही नहीं।
दिव्यांग हूँ, 500 रुपए महीना पेंशन पाता हूँ, अगर आर्थिक कारण हो तो मैं अपनी पेंशन बीबीसी को चंदे के रूप में हर महीने के देने के लिए तैयार हूँ।
मैं असल जिंदगी में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बनना चाहता था। जब मैं रेडियो सुन जाता था तो मुझे लगता था कि इससे बेहतर और भी जीवन है, दुनिया है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। भारत प्रशासित कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के बाद से ही यहां इंटरनेट सेवा पर रोक थी। हालांकि ये 2G इंटरनेट सेवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 300 साइटों के लिए ही खोली गई है। सोशल मीडिया को अभी भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के मौके पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा,
हमारे संविधान ने हम सबको एक स्वाधीन लोकतंत्र के नागरिक के रूप में कुछ अधिकार प्रदान किए, लेकिन संविधान के अंतर्गत ही हम सब ने यह जिम्मेदारी भी ली है कि हम न्याय, स्वतंत्रता और समानता तथा भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहें। राष्ट्र के निरंतर विकास तथा परस्पर भाईचारे के लिए यही सबसे उत्तम मार्ग है।
ये थे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सेना के चिकित्सा विशेषज्ञों का दल चीन के हुबेई प्रांत पहुंच गया है, जहां कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बीते एक महीने में इस वायरस के 1200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अकेले चीन में इससे मरने वालों का आंकड़ा 40 के पार पहुंच चुका है। वुहान शहर से शुरू हुआ ये संक्रमण अब दूसरे देशों तक भी पहुंच चुका है। अमेरिका, जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया में भी इस वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वुहान शहर में अस्पतालों की संख्या सीमित है और संसाधनों की भी तंगी है। बीजिंग में रहने वाली एक महिला ने बताया कि एहतियात के तौर पर अब वो अपने घर में ही रह रही है। हम बाहर जाने से परहेज कर रहे हैं, जितना ज्यादा संभव हो रहा है हम घर में ही रह रहे हैं। हमने घरों की खिड़कियों और दरवाजों को भी बंद कर रखा है। हर कोई बात कर रहा है कि ये वायरस बेहद खतरनाक है। मुझे भी लग रहा है कि ये बेहद गंभीर मामला है। टीवी और समाचार में भी इसके बारे में बहुत अधिक बताया जा रहा है। बीजिंग में रहने वाली एक महिला के शब्द। पेंटागन ने कहा है कि इराकी बेस पर ईरानी हमले में 34 अमरीकी सैनिकों के सिर में चोट लगने के बारे में पता चला है। एक प्रवक्ता ने बताया कि 17 जवानों को स्वास्थ्य निगरानी में रखा गया है। 8 जनवरी को हुए ईरानी हमले के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस मामले में किसी भी अमरीकी सैनिक को चोट नहीं आई है। ईरान ने अपने कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के अमरीकी ड्रोन हमले में मारे जाने के बाद ये कार्रवाई की थी। ट्रंप ने कहा था कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए वो ईरान पर जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। हालांकि पिछले सप्ताह पेंटागन ने कहा था कि हमले में 11 जवानों का इलाज चल रहा है। पूर्वी तुर्की में आए भूकंप में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य बड़े स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा 1000 से अधिक लोग इस भूकंप में घायल भी हुए हैं। इलाजिक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
Depremin ilk olduğu andan itibaren toplam 39 kişi göçük altından sağ olarak çıkartıldı.
भूकंप के मलबे के नीचे से कम 9 लोगों को बाहर निकाला गया है। आप सभी को ये पता है कि डोगनियोल में एक इमारत ढह गई थी, उसमें दबकर कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मलबे में अब कोई फंसा हुआ नहीं है। सेवराइस में एलाजिक भूकंप का केंद्र था, वहां से 2 लोगों की मौत की खबर है। यहां कल रात से ही स्थिति नियंत्रण में है, सुलेमान सोयलू के शब्द। वहीं तुर्की के पर्यावरण मंत्री मुरत कुरुम का कहना है कि इस भूकंप में कम से कम 5 इमारतें ढह गई हैं। इसके अलावा कई दूसरी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी टीमें ये पता लगा रही हैं कि इस भूकंप की वजह से कितना नुकसान हुआ है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, आपका स्वागत है बीबीसी इंडिया बोल में। मैं हूं आदर्श राठौर। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। इससे पहले कि हम आज के कार्यक्रम को सुनें, आपको बता दें कि ये बीबीसी इंडिया बोल का आखिरी अंक है और इसे हमने हाल ही में रिकॉर्ड किया है। इस विशेष कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं बीबीसी हिंदी के रेडियो एडिटर राजेश जोशी और बीबीसी की भारतीय भाषाओं की संपादक रूपा झा। साथ ही शामिल हैं आप श्रोता भी।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मैं हूं राजेश जोशी, नमस्कार। आज कई हफ्तों या महीनों के बाद मैं इंडिया बोल के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूं और आपको थोड़ा सा चौंकाना भी है, क्योंकि मेरे साथ हैं भारतीय भाषाओं की संपादक रूपा झा। उनकी आवाज सुने आपको कई अरसा हो गया है, तो रूपा जी आप भी अपने श्रोताओं से बात कीजिए।
बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इंडिया बोल, राजेश जी जैसा अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, 10 साल पूरे हो गए इसको, और हम लोगों ने अभी अपने ईमेल के तहखाने में जाकर के हमने सोचा कि पहला जो इसका अंक था वो हमने किया था, और अभी पुराने सारे साथी याद आ रहे हैं। तो 6 अक्टूबर 2009 को हम लोगों ने पहली बार इंडिया बोल को प्रसारित किया था और हम प्रेजेंटर थे,
और आज ये आखिरी प्रसारण है और आप इसमें शामिल हैं। आज इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी संक्षेप में बता दें कि जो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, कुछ चुनिंदा फोन हमने लिए हैं। कुछ श्रोताओं को जरूर शिकायत होगी कि हमें क्यों नहीं लिया, लेकिन इतने लाखों श्रोता हैं, उनसे छांट पाना बड़ा मुश्किल है। आइए पहले हमारे श्रोता कौन है उनसे बात करते हैं।
मेरा नाम राधा है सर।
अरे वाह राधा, आप कहाँ की हैं और अपने बारे में थोड़ा बताइए, बीबीसी सुनती हैं?
जी मैं बिहार से हूँ, लेकिन फिलहाल मैं भारतीय जनसंचार संस्थान की छात्रा हूँ और इस संस्थान में पढ़ रही हूँ, तो इसका पूरा श्रेय बीबीसी हिंदी को जाता है, क्योंकि मैं 2008 से सुन रही हूँ और मेरे एक शिक्षक थे, उन्होंने बताया कि आप ये सुनिए, और उस वक्त से जो सुनना शुरू किया अब तक सुन रही हूँ, और बहुत दुख हो रहा है मुझे कि मतलब वो सफर खत्म होने वाला है।
राधा, ये हर खूबसूरत सफर खत्म होता है। आप किस गांव की या किस शहर की रहने वाली हैं?
जी मैं छपरा की एक दाऊदपुर पिलोई से संबंध रखती हूँ, पिलोई गांव का नाम।
और रेडियो पे सुनती थी आप?
हाँ मैं रेडियो पे सुनती थी, उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मतलब मम्मी जो पैसे देती थी उसी को इकट्ठा करके मैंने रेडियो खरीदा, और उसके बाद से कभी रेडियो से सफर टूटा ही नहीं।
रूपा झा का नाम सुना है आपने?
हाँ,
झा यहाँ मौजूद है,
मेरी फेवरेट आवाज है।
राधा, आपकी आवाज सुन के इतना अच्छा लग रहा है, और जिस तरह से आपने अपनी दोस्ती बीबीसी हिंदी रेडियो के साथ जो रही है उसके बारे में जिक्र किया। देखिए हम जरूर जा रहे हैं रेडियो शॉर्ट वेव, चूंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे लगातार श्रोताओं की संख्या कम होती जा रही है, और नए जमाने में आप जैसे श्रोतागण से लगातार संपर्क बने रहे इसके लिए हम लोग नए प्लेटफॉर्म्स पे भी आ रहे हैं, तो हमारा और आपका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ प्लेटफॉर्म में तब्दीली होगी। प्लीज आप अपना साथ और अपना समय बीबीसी हिंदी के साथ और बीबीसी के साथ बनाए रखें। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
अच्छा, अब हमारे अगले जो श्रोता हैं उनका नाम हमारे बाकी श्रोताओं को थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, क्योंकि उनकी चिट्ठियां अरसे से आती रही हैं। गौतम दत्ता हमारे साथ हैं। गौतम दत्ता जी, आप कहाँ रहते हैं और अपने बारे में थोड़ा बताइए, बीबीसी से कितना पुराना साथ है आपका?
मैं रुई धासा किशनगंज बिहार से बोल रहा हूँ। 1983 में पहली बार मैंने बीबीसी के बारे में अपने मित्रों से कक्षा 10 में सुना था। उन दिनों हमसे पूछिए हुआ करता था, जो मेरा पसंदीदा प्रोग्राम था। तब से आज तक यह सिलसिला जारी रहा। रेडियो पर प्रसारण अच्छी तरह सुन पाऊँ इस चक्कर में मेरे पास करीब 15-16 छोटे बड़े रेडियो सेट जमा हो गए।
रियली? आपके पास 15-16 छोटे छोटे रेडियो सेट हैं? गौतम जी, रूपा बोल रहे हैं। अच्छा, गजब। आप तस्वीरें भेजिए ना उसकी, एक फोटो हमें ईमेल करिए।
अच्छा गौतम जी, बीबीसी के साथ आपकी जुड़ी जो यादें हैं, आपको खट्टा मीठा अनुभव कुछ रहा होगा जरूर। मीठा तो आपने बता दिया, खट्टा अनुभव भी कुछ होगा, क्योंकि आपकी आलोचना वाली चिट्ठियां आती थी।
खट्टा अनुभव ये था, 2016 में हमारे यहाँ भयंकर बाढ़ आई थी, जिसकी रिपोर्टिंग आपके द्वारा अच्छी तरह नहीं हुआ था। उस समय प्रायः एक महीने तक हमारा पूरा रेलवे जाम था, पूर्वी भारत से बाकी भारत का अन्य हिस्सों का संपर्क पूरी तरह टूट गया था।
देखिए रूपा, उम्मीद जो बीबीसी से थी, अगर वो उम्मीद हम पूरा नहीं कर पाते थे तो श्रोताओं को वो कसक बाकी रह जाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका।
जो आपने बात कही राजेश जी कि श्रोताओं की जो उम्मीद रहती रही है बीबीसी से, इतना अच्छा लगता है सुनकर। बड़े हक से अपनी बात कहते हैं, आलोचना भी करते हैं, प्यार भी देते हैं, और यही जो रिश्ता है। और बीबीसी इंडिया बोल ने जब शुरुआत इस कार्यक्रम की हुई थी तो वही था कि भाई श्रोताओं की आवाज किसी एक मुद्दे पर आनी चाहिए। और ये जो ट्रेल हम लोगों ने बजाया है राजेश जी,
बीबीसी इंडिया बोल,
आप उस पे रेहान साहब के चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं, वो और मले नीरव। तो मले नीरव रेहान साहब की वो आवाज है उसमें, और पाणिनी आनंद हमारे एक पुराने साथी थे जो बीबीसी में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में है। तो हम दोनों की टीम थी और हम लोगों ने जब इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो यही श्रोताओं से और पास नजदीक पहुंचने का एक जरिया था ये कार्यक्रम जो 10 साल लगातार चला। तो क्या ही अच्छा मौका है कि हम लोग फिर से श्रोताओं के साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। हमारे अगले श्रोता
जो हैं आपके, वो इतने रेगुलर हैं कि प्रोग्राम बंद होते के साथ ही उनका SMS मैसेज आता है
और वो सबके पास आता है।
हाँ, सबके पास भेजते हैं, उसमें आलोचना भी होती है, उसमें तारीफ भी होती है। मैं बात कर रहा हूँ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, मुझे देखिए याद हो गया पता उनका, कैथन पुरवा अमेठी के रहने वाले हैं। प्रमोद जी।
जी सर नमस्ते जी, मैं सुन रहा हूँ।
प्रमोद जी आप तो बहुत अरसे से सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी रेडियो।
जी सर मैं 31 साल पुराना बीबीसी का श्रोता हूँ, मैंने 1989 से इसको सुनना शुरू किया था।
क्या यादें आ रही आपके जहन में दिमाग में?
मुझे यादें आ रही जब 1991 में राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो सर्वप्रथम मैंने जो है बीबीसी पर ही इसको सुना था जो है।
अच्छा प्रमोद जी, जो आप हम लोग को हमेशा इसलिए याद रहते हैं और रहेंगे भी इंशाल्लाह, वही जो बात राजेश ने कहा कि आप जैसे कार्यक्रम खत्म होता है SMS भेजते हैं, तो आप कितने लोगों को भेजते हैं?
मैं SMS भी भेजता हूँ, जो कुछ आप क्या प्रसारित होता है उसको मैं डायरी में लिख भी लेता हूँ, आज इस डेट को इनकी रिपोर्ट आई, पूरा हमारे पास पूरा लेखा जोखा है सब।
और अब श्रोता संघ भी चलाते हैं उस जगह में, कैसे आप अपने काम के साथ ये सब कैसे इसका प्रबंधन करते हैं आप?
ऐसा कि जो रेडियो सर है कि ये किसी काम में बाधा नहीं डालता जो है।
जी जाहिर है ये हम सबके लिए बहुत अफसोस की खबर तो है ही, पर जैसा राजेश ने पहले भी कहा कार्यक्रम में कि हर खूबसूरत बात का एक अंत होता है और एक नई खूबसूरत बात शुरू होती है, तो अब जब रेडियो का प्रसारण बंद हो जाएगा तो आपके नियम में, आपके रूटीन में, डेली रूटीन में किस तरह की तब्दीली आएगी?
अभी तो हम लोग तो दुख के सागर में डूबेंगे।
काश आप ना डूबे।
बंद होने तक हम अभी भुला नहीं पाएंगे, बंद करना हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हम लोग सब श्रोता जो है अनाथ हो गए हैं।
प्रमोद जी,
मैं दिव्यांग हूँ, 500 रुपए महीना पेंशन पाता हूँ, अगर आर्थिक कारण हो तो मैं अपनी पेंशन बीबीसी को चंदे के रूप में हर महीने के देने के लिए तैयार हूँ।
नहीं प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
बंद की जाए।
नहीं बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी भावनाओं की हम बहुत कद्र करते हैं और ये पूंजी हमारे पास हमेशा रहेगी, हम बीबीसी में हों।
और एक बात बता दें, लोग सवाल उठाते हैं बीबीसी निष्पक्ष है, पहले भी थी और उसकी निष्पक्षता बरकरार रही, बीबीसी पूरी तरह से निष्पक्ष है और अन्य मीडिया चैनलों से अलग है।
प्रमोद जी आपकी बात बस सुनकर इतना बता नहीं सकते क्या महसूस हो रहा है, शब्दों में उसको बांधना मुश्किल है, पर आपका इतना शुक्रिया। और ये जो तमगा आपने दिया है हमें निष्पक्षता का, ये इतना जरूरी तमगा है इस दौरान, बहुत शुक्रिया आपका। आपका संपर्क हमसे बना रहे, आप प्लीज SMS करते रहे, क्या कुछ नया हो सकता है उससे भी आप जुड़े रहेंगे
और अपने SMS जरूर भेजते रहे,
जरूर भेजते रहे SMS, क्योंकि हम लोग अब सब एक परिवार का हिस्सा हो गए। प्रमोद जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
और आपने रूपा जी वो कहावत सुनी होगी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अब हमारे अगले जो श्रोता हैं वो हमारे ऐसे प्रशंसक हैं और ऐसे निंदक हैं कि आप उनको कभी भुला नहीं पाएंगे। उनका नाम है शब्बीर खन्ना और वो रियाद में रहते हैं, सऊदी अरब में। शब्बीर साहब
जी सर,
आप इतनी डूबी हुई आवाज में ना बोले, थोड़ा तो हंसे।
ऐसा है कि किसी का जनाजा निकल रहा और आप उसको ये कहे कि भाई तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अब तो ये कह सकते हैं कि हम अभी मेरे प्रिय श्रोता ने जो बताया 500 रुपए उसकी है, वो भी देने के लिए तैयार है, तो हम सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप प्लीज इसको इतिहास नहीं बनने दे, कैसे भी इतिहास नहीं बनने दे।
शबीर साहब आप बीबीसी से कितनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं ये इसका अंदाजा में है, लेकिन कुछ चीजें एक खूबसूरत मोड़ दे करके छोड़ना अच्छा होता है। साहिर लुधियानवी ने कहा था शायद, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। शब्बीर साहब आपकी चिट्ठियां, आपकी आलोचना हमें दिशा देती रही है, आपकी बेबाक जो कटाक्ष और आलोचना होती थी हम उसका जिक्र अपनी एडिटोरियल मीटिंग में करते थे, लेकिन आपका साथ हमारा बना रहेगा। आपकी कुछ यादें तो बताइए कि आपकी यादें शुरुआती कब की हैं, आप रियाद में हैं, हिंदुस्तान में कहाँ से हैं, कुछ तो बताएं।
मैं सर राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से कुचामन सिटी का रहने वाला हूँ।
और कब से सुनना शुरू किया बीबीसी?
अरे साहब बीबीसी तो पहले बचपन में भी सुनता था, लेकिन उसके बाद में 91 में मैं सऊदी अरब आ गया था, और 91 में आने के बाद बीबीसी को कंटिन्यू सुनता रहा। कर वो टाइम हमें याद है कि मैंने यहाँ से एक लेटर भेजा था और आपके पूरे लंदन से मेरे पास फोटोग्राफी आई थी पूरे टीम की। उस टाइम मेरी पोस्टिंग थी रियाद दम्माम में, और दम्माम से मैं था उस टाइम सलमा जेदी जी, और ये आपको याद है तो एक दफे वाजपेयी के टाइम पे हमारा प्रधानमंत्री कौन, एक प्रोग्राम आपने रखा था उसके डायरेक्ट लाइव हुआ था उस प्रोग्राम को, क्या
कैसा बहुत पुरानी यादें हैं जी।
और शब्बीर आप हमको ये भी याद है कि आप इंडिया बोल के बड़े रेगुलर कंट्रीब्यूटर रहे हैं, और आप जिस तरह से महसूस कर रहे हैं हम सब उसका सम्मान करते हैं। बस एक बात और बताना चाहेंगे, और ये कोई सफाई नहीं है, आपको याद होगा कि 2011-12 में भी एक बार बीबीसी हिंदी रेडियो के बंद होने का ऐलान हुआ था, और फिर काफ़ी मशक्कत के साथ इसको चलाए रखने की कोशिश भी की गई और हम लोग चलाते रहे। अब ये फैसला मुश्किल है पर लेना ज़रूरी इसीलिए है शब्बीर साहब, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन की भी दुनिया में कि जहां ऑडियंस बिल्कुल ख़त्म होती जाती है, हमें वहां होना ज़रूरी होगा जहां ऑडियंस है, मौजूद है और जुड़ेगी। तो हम हर जगह नहीं हो सकते हैं,
और आप जुड़े रहिए, आप तो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकते हैं,
इंटरनेट के माध्यम से, और हम ऑडियो की दुनिया में और भी कुछ नया ताज़ा कुछ अच्छा बेहतरीन ज़रूर करने की उम्मीद रखते हैं और योजनाएँ हैं। तो भले शॉर्टवेव रेडियो पर आप वो ट्यून इन करके नहीं सुन पाएंगे, लेकिन बीबीसी हिंदी ऑडियो कहीं नहीं जा रहा है सर, तो प्लीज मन न मसोसे। और बड़ा अच्छा लगता है सुनकर के हर कोई कहना चाहता है हम इतना भेज देते हैं आप कंटिन्यू रखिए, पर ये कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है और नए ऑडियंसेस तक भी कैसे पहुंचना है पुरानों को साथ लेकर के। तो देखिए ना, भारत में भी सब लोग अब जुड़ते चले जा रहे हैं नए नए उपकरणों पर।
आपने जो कहा कि पुराने लोगों को साथ लेकर के, तो एक बहुत पुराने श्रोता हमारे साथ हैं इस समय, वो बलिया के रहने वाले हैं, बलिया के गांव के रहने वाले हैं, और उनका नाम है सीताराम राय। राय साहब नमस्कार।
हाँ प्रणाम जोशी जी, प्रणाम।
प्रणाम सर, प्रणाम। देखिए रूपा झा मेरे साथ हैं, आपको याद किया हमने क्योंकि आप बहुत पुराने श्रोता हैं। बीबीसी की यादें पुरानी बताइए जरा।
क्या कहे, हमको तो कुछ कहने को ही नहीं हो रहा है जोशी जी। कल नारायण बारेठ की रिपोर्ट सुने तो हम रो रहे थे, मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे कि अब क्या किया जाएगा। हम लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं, उम्र हो गई है क्योंकि 60-70 वर्ष, हम ऑडियो सीख भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते हैं, इसलिए रोना छोड़ के और कुछ तो आ नहीं रहा है। अचला शर्मा जी और रूपा जी जब आंगन के पार का ये सीरियल करी थी रूपा झा जी,
जी,
तो एक बात मैंने पूछी थी और अचला जी ने लंदन से जो है जवाब रूपा झा से दिलाया था, वो हमको याद है सब कुछ बातें। अब केवल यादें ही साथ रहेंगी, अब तो ज्यादा दिन उम्र भी नहीं है।
नहीं ऐसा ऐसा मत कहिए रही सीताराम जी, अरे आप 90 से पार जाएंगे बिल्कुल, आप इसको निशा खाते
तो
रहिए।
वो यादों के सहारे ही अब जी लेंगे और क्या किया जाएगा।
नहीं नई पीढ़ी
कोई बस तो नहीं है
सीताराम जी, नई पीढ़ी आपको ऑडियो से बीबीसी का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ना सिखाएगी, और आप सीखेंगे उनको दिशा देंगे, तो आप दिल छोटा मत कीजिए। अगले श्रोता हैं रूपा जी, जिनकी चिट्ठियां हमने लंदन में भी पढ़ी हैं, और उनके फिर ईमेल आना शुरू हुए जो हमेशा बोल्ड में लिखते थे,
हाँ।
और हमेशा लिखते हैं, आपका एक श्रोता जंग बहादुर सिंह गोल पहाड़ी जमशेदपुर से। जंग बहादुर सिंह जी आपसे पहली बार फोन पे बात हो रही है मेरी।
नमस्कार नमस्कार राजेश जी, रूपा जी को भी मेरा प्रणाम बोलिएगा।
बहुत प्रणाम सर, और आपका गोल पहाड़ी हम लोग सुन के बहुत मजे करते थे कि कितना सुंदर उपनाम रखा है गोल पहाड़ी।
ये दुआ है आपका कि आज पूरा विश्व में जितना रूपा झा को लोग जानते हैं उतना मुझे भी जानते हैं।
बिल्कुल
ये बात सही है। जंग बहादुर सिंह आपने और एक कवि आत्मा जी हमारे हुआ करते थे, वो चिट्ठियां आज उनको याद करना जरूरी है, वो शायद नहीं रहे,
गुजर गए, वो हाल में ही गुजरे।
तो आप दोनों की चिट्ठियां लगातार अचला शर्मा इस्तेमाल करती थी अपने प्रोग्राम में आपकी राय में।
मैं तो उस समय जुड़ा था बीबीसी से, आपका आपातकाल जब शुरू हुआ था, लोग कहते हैं कि बहुत कोई की मेरा फादर से हमने सीखा, दादा से सीखा, मैं खुद इन्वेंट किया हूँ।
आपने खुद तो इसका पता किया बीबीसी का?
जी जी, चौथे क्लास में पढ़ रहा था तो लोगों को देखता था शाम गोधूली बेला के समय में, जब भी खेल के लौटता था तो चार आदमी छह आदमी घेर करके एक रेडियो सुन रहे हैं, एक बार दो बार तीन बार, तो कुछ मुझे भी चाह रहे थे क्या है, घर में तो केवल बिनाका गीत माला रेडियो सिलोन, तो ये क्या है, इसको भी सुनना चाहिए। रेगुलर तो नहीं हो पाया था, रेगुलर मैं करीब 78-79 से मैं बीबीसी से जुड़ा। उस समय हिमांशु भादुड़ी शायद लास्ट थे, उस समय आले हसन जी भी थे।
अच्छा, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, बिल्कुल आले हसन और हिमांशु भादुड़ी वो तो एकदम स्तंभ रहे बीबीसी हिंदी के।
जी भैया, उस समय जब मैंने शुरू हुआ था ईरान का क्रांति, शाह का सत्ता पलटी हुआ, यूएसएसआर का पतन, प्लसराई का ग्लासनोस्ट, उसके बाद फॉकलैंड युद्ध आया सर, उसके बाद प्रिंस चार्ल्स सर, लेडी डायना का विवाह, मुझे याद है कि बीबीसी मुझे कार्ड भेजी थी प्रिंस चार्ल्स सर लेडी डायना का, वो मैं आज भी अपने घर पे रखा हूँ ग्लास में लगा करके सर, फ्रेम में।
बहुत शुक्रिया, आपका नाम तो हमेशा हमारे जहन में, हम सबके जहन में रहेगा। जंग
और संपर्क भी जारी रहेगा।
ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मेल लिखते रहिएगा सर और संपर्क में रहिएगा। बहुत शुक्रिया
और अपना ख्याल रखिएगा, बीबीसी से जुड़े रहिएगा। अगले श्रोता हमारे हैं इलाहाबाद से डॉक्टर अनिल शुक्ल। डॉक्टर अनिल शुक्ल के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि इन सब श्रोताओं को मैं इनकी चिट्ठियों के मार्फत ही जानता हूं। डॉक्टर अनिल शुक्ल हमेशा अंग्रेजी में चिट्ठी लिखते हैं और बीबीसी के जितने प्रखर वो समर्थक हैं उतने ही प्रखर आलोचक भी हैं। कई बार उनकी चिट्ठियों का हम इस्तेमाल कर पाते थे, कई बार नहीं कर पाते थे, लेकिन हमेशा उन्होंने कभी नाता तोड़ा नहीं, कितने ही नाराज रहे हमें हमसे। अनिल जी स्वागत है आपका इंडिया बोल में, ये आखिरी इंडिया बोल है, आज मौका है आपके पास, आपको जो कहना हो बीबीसी के बारे में शिरोधार्य शिरोधार्य है।
अरे बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आप तो ये समझ ही रहे हैं कि मैं आप अक्सर क्रिटिसाइज करता था, लेकिन जुड़ा रहा इसलिए कि इतना ज्यादा लगाव था और ये लगाव कुछ दिनों का नहीं था। मैं बीबीसी हिंदी का पिछले 4 दशकों से नियमित श्रोता रहा हूँ, पर इस कार्यक्रम में पहली बार शामिल हो रहा हूँ। बस अफसोस सिर्फ इस बात का है कि पहली मुलाकात अंतिम मुलाकात बनकर रह जाएगी।
देखिए बीबीसी का रूपा, मैं आपको भी इसमें शामिल करना चाहता हूँ। बीबीसी की जो अपनी पूंजी है, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी और किसी गैर जानिबदार जैसे उर्दू में कहते हैं, वो बीबीसी की पूंजी है। अनिल जी को इसमें कुछ कहना है, मुझे लगता है कि आपका हमेशा अंदर उमड़ घुमड़ रहता है कि बीबीसी शायद बैलेंस नहीं रहती है, आप कहिए ना।
मैंने कहा होगा ऐसा, लेकिन मैं आज ये कहना चाहूंगा कि एकदम से कुछ सुनने के बाद मैं रिएक्ट करके लिख देता था और मैं अक्सर तारीफ भी करता था, वो वाली चिट्ठियां आप शामिल नहीं करते थे, आप वही चिट्ठियां शामिल करी जिसमें हमने आपको कुछ मतलब क्रिटिसिज्म रहा है,
क्रिटिसिज्म को तरजीह ही देते थे हम,
तो क्या कहा जाए। बीबीसी हिंदी एक परिवार जैसा था, मतलब एक अद्भुत परिवार था जिसमें दूर रहते हुए भी हम सब एक ही घर में रहे।
जी परिवार था मत बोलिए, परिवार है और रहेगा, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग एक बार फिर से इसी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, प्लीज संपर्क बनाए रखें, हम लोग बीबीसी हिंदी वेबसाइट पर हैं और अब एनडीटीवी इंडिया पर हमारा आधे घंटे का कार्यक्रम आ रहा है सोमवार से शुक्रवार तक रात 10 बजे, बीबीसी दुनिया वो भी देखिए, तो संपर्क तो बना रहेगा।
और अगले श्रोता हैं आरा बिहार से आशुतोष कुमार पांडे, उनको कौन नहीं जानता,
कौन नहीं जानता।
वो हमारे दफ्तर भी आए हैं और हमसे बात भी करते हैं, हमसे लड़ते झगड़ते भी रहे,
बहुत
मोहब्बत भी बीबीसी से करते रहे। आशुतोष कुमार पांडे, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं यहां पे, बीबीसी ने आपको क्या कोई रास्ता दिखाया, क्या हासिल किया है बीबीसी का?
मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा किसी चीज का शुक्रगुजार हूं तो है बीबीसी रेडियो का, क्योंकि यदि बीबीसी रेडियो मेरे जीवन में नहीं रहती तो मैं इतना बोलने लायक भी नहीं रहता। मैं हमेशा उस पृष्ठभूमि में रहा हूँ जहाँ बड़े गोलियां चलती थी। मैं असल जिंदगी में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बनना चाहता था, मैं यह कहने की हिम्मत जो है वो बीबीसी नहीं थी। शाम को जब मैं रेडियो सुनता था या सवेरे जब सुनता था तो मुझे लगता था कि इससे बेहतर मैंने और भी जीवन है, दुनिया है। मैंने चिट्ठी लिखनी शुरू की और जब चिट्ठी लिखनी शुरू की तो उसका जवाब आने लगा, जब जवाब आने लगा तो मुझे लगा कि मेरा भी कुछ वजूद है। आप ये समझिए कि मैं किताबें नहीं पढ़ता था, आप ये समझिए कि मैं दिन भर आलतू फालतू के कामों में लगा रहता था, दियारा जाना है, किसी के खेत में काट लेना है, किसी का टमाटर चुरा लेना है, किसी के यहाँ का चौकी उठरवा लेना है, इस टाइप से मैं सोचता रहता था।
उसके बाद बीबीसी ने आपको किताबों की लत लगा दी,
और
मैं इसलिए कह सकता हूँ, आशुतोष जी एक मिनट, मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आपने हमसे जिद करके किताबें मंगवाई हैं और हमने भेजी हैं।
मैं अभी भी जिद करता हूँ लेकिन आप उतनी किताबें कहाँ भेज पाते हैं।
देखिए ये शिकायत भी कर दी।
बीबीसी ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे रास्ते पर लाया और मानवीय बनाया।
ये बहुत बड़ी रूपक, कितनी बड़ी ये बीबीसी का जो अस्तित्व है ये उस को सार्थक करता है आशुतोष कुमार पांडे का ये कहना। अगले श्रोता हमारे पास हैं।
मेरा नाम रविंद्र कुमार शर्मा है, मैं हरियाणा स्टेट के अम्बाला कैंट से बोल रहा हूँ जी। मैं एक रिटायर्ड लेक्चरर हूँ पॉलिटिकल साइंस का, मैं ब्लाइंड पर्सन भी हूँ और इस वक्त मैं 74 ईयर्स कम्प्लीट करने जा रहा हूँ और 1963 से मैं बीबीसी तब से सुन रहा हूँ, जब केवल 15 मिनट का आता था वार्ड से 8.5 और प्यारे शिवपुरी जी, आले हसन जी, कितने नाम लो, पम्मी गोगनानी, जसविंदर सिंह जी जो अब दुनिया में नहीं रहे, और पुरुषोत्तम लाल पाहवा जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जुड़े रहे और आगे भी बीबीसी का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उससे आप जुड़े रहेंगे। हमारे अगले श्रोता है राजू शर्मा। राजू शर्मा को बीबीसी के यहाँ दिल्ली दफ्तर में लगभग रेडियो से जुड़े हुए और ऑनलाइन से जुड़े हुए सब लोग जानते हैं, क्योंकि राजू शर्मा के पास वो खजाना है जो हम में से किसी के पास नहीं है। बीबीसी के एक एक कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके अपनी दुकान में वो उसका कैसेट रखते हैं। राजू शर्मा, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ?
जी सर।
आप बताइए कहाँ, किस जगह से बोल रहे हैं आप?
दीवाने फैंस की श्रेणी में।
मैं ग्राम बंडोल, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से बोल रहा था।
जी,
तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं प्रोग्राम आप? सारे प्रोग्राम क्या कैसेट पे रिकॉर्ड करते?
मैं मैडम पहले तो क्या उस जमाने में ये मोबाइल वोबाइल थे नहीं, तो ऑडियो कैसेट में रिकॉर्डिंग करता था। 2 मिनट टेप रिकॉर्ड होता था मेरे पास में, तो मेरे पास में करीबन 150 कैसेट हैं आपके प्रोग्रामों के।
और अभी आप उसको चला पाते हैं? क्योंकि अब तो टेप रिकॉर्डर भी नहीं मिलता है।
तो खैर, वो कैसेट का तो जमाना खत्म हो गया, उसको मैंने फिर कार्ड पे उसको
ट्रांसफर कर लिया। तो आप वहाँ पे उस इलाके में सिवनी में बीबीसी हिंदी रेडियो के ब्रांड एम्बेसडर रहे। आपको बीबीसी के आदमी के तौर पे वहाँ जानते होंगे लोग।
जी बिल्कुल सर, जी सर, जी सर।
तो आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा रहा जिसको आप बार बार कैसे टेप रिकॉर्डर में चला चला के रिवाइंड कर करके सुनते रहे?
मैडम आजकल कार्यक्रम तो जो होता था पहले वो वाला कार्यक्रम तो वो बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा साप्ताहिक कार्यक्रम बहुत सारे आते थे। लगभग ये मान चलिए कि बीबीसी के 71 साल में से 40 साल तो मैं उनके साथ में गुजारा हुआ हूँ, और बहुत सारी यादें हैं उनके साथ में। बहुत सारे उद्घोषक, अच्छे अच्छे उद्घोषक रहे, उनकी आवाजों से मेरा मार्गदर्शन होता
रहा। तो चलिए वो जो कैसेट्स हैं आपके पास राजू जी, उसको उनको संभाल के रखिए, ताकि हम लोग फिर कभी जब मिले और जरूर मिलेंगे तो सुने भी और उसकी उसको देखे भी कि भाई ये कहाँ का है। तो बिल्कुल अब तो एक तरह से वो लेगेसी का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया राजू जी इस सफर के लिए।
जी मेरे पास में मैडम 1940 से लेकर जो उद्घोषक बीबीसी में हिंदी सेवा प्रसारित रहे हैं उन लोगों का एक मैंने एल्बम तैयार किया हुआ है।
वो आपने दिखाया था हमें यहाँ पे जब आप दफ्तर आए थे
2013
में आए थे। राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे आखिरी श्रोता इस इंडिया बोल के हैं, केसिंगा उड़ीसा से सुरेश जी हैं। सुरेश जी।
जी नमस्कार।
नमस्कार सुरेश जी।
जी बहुत ही भारी मन से बात कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए 1974 से मैंने सुनना शुरू किया। उस समय कैलाश बुधवार, रत्नाकर भारतीय का दौर था। और संक्षेप में यदि मैं कहूँ कि बीबीसी की मेरे जीवन में क्या अहमियत है, तो बीबीसी की सबसे बड़ी देन मेरे जीवन में हिंदी भाषा है। क्योंकि मैं यही उड़ीसा में, मेरी पैदाइश उड़ीसा की है, मेरी शिक्षा दीक्षा सब उड़िया माध्यम से हुई, लेकिन बीबीसी सुनते मुझे हिंदी से अनुराग पैदा हुआ और मेरी हिंदी पे पकड़ इतनी बढ़िया हुई कि आज मैं यहाँ एक प्रतिष्ठित अखबार का डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ।
क्या बात है, ये देखिए पहली बार हमें पता चल रहा है।
देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि बीबीसी का और मेरा रिश्ता गुरु द्रोण और एकलव्य जैसा है, क्योंकि मैंने दूर बैठे, आज तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इतने तेज हैं, लेकिन आप 74 की बात करें तो उस समय बीबीसी सुन के अपनी हिंदी सुधारी।
एकलव्य का जो आपने जिक्र किया सुरेश जी, एकलव्य की तरह एकाग्रता तो आपने दिखाई, लेकिन बीबीसी आपसे अंगूठा नहीं मांगेगा।
देखिए बिल्कुल सही बात है। बीबीसी का आकर्षण मेरे लिए क्यों बढ़ा, जब मैं छोटा था किशोरावस्था में ही मैंने पाल जगत कार्यक्रम रजनी कॉल दीदी पेश किया करती थी, मैंने तभी से बीबीसी सुनना शुरू किया। और 27 मार्च 1977 को जब पहली बार रात को 10:15 बजे चलते चलाते में मेरा पत्र शामिल हुआ तो मैं खुशी के मारे रात भर सोया नहीं था।
आपको तारीख आज भी याद है। आप रूपा जी अंतिम गुड बाय अगर कहना चाहें।
अंतिम मेरे लिए तो सच में हम सबके लिए ये बहुत ही एक ऐसा मौका है जिसको कि शब्द में नहीं कह सकते, पर फासलों ने रिश्तों को कमजोर होने ना दिया, क्योंकि मेरा जो रिश्ता रेडियो से रहा बहुत पुराना रहा, पर बीच में काफी संपर्क टूट गया, रेडियो पे आना ना हुआ। तो फासलों ने रिश्तों को कमजोर होने ना दिया, दिल है मिले हुए तभी तो भीड़ में हमें खोने ना दिया, मुद्दतों बाद मिले हैं आज और आंखें हैं नम, तुझसे मिलने की खुशी है और बिछड़ने का भी है गम।
क्या बात है, तुझसे मिलने की खुशी है, बिछड़ने का भी है गम। मुझे लगता है कि इसी के साथ ही ये कार्यक्रम हमें यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का और रूपा जी आपका भी नमस्कार।
इसी के साथ हमारा ये विशेष इंडिया बोल संपन्न होता है। आदर्श राठौर को राजेश चौहान के साथ अनुमति दें। नमस्कार, शुभरात्रि।